कलीसिया का स्वभाव बाइबल विभिन्न रूप से प्रकट करती है। बाइबल कलीसिया को देह, मसीह की देह, मसीह की दुल्हन, परमेश्वर का झुंड, परमेश्वर की भेड़े, परमेश्वर की सेना आदि वगैरह है। लेकिन मैं कलीसिया को एक परिवार कहता हूँ। हम परमेश्वर का परिवार है, हम परमेश्वर का कुटुंब है। एफिसियंस 2:19 में बाइबल बताती है, अतः तुम अब विदेशी और अजनबी न रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के बन गए हो। मसीह होने का यह एक महत्वपूर्ण चिन्ह है। रोमियो 12:5 में बाइबल कहती है, वैसे ही हम भी जो अनेक हैं मसीह में एक देह है और एक दूसरे के अंग हैं। क्या आपने सुना, हर एक जन अन्य लोगों का अंग है। मसीह बनने के बाद यह दूसरा समर्पण है जहां हम लोगों को ले जाते हैं। पहले आप मसीही बनते हैं और उसके बाद कलीसिया के सदस्य बनते हैं। यह आपका अगला कदम होता है। मसीह अगुवे होने के नाते हमें लोगों को यह सिखाने की आवश्यकता है कि वे न सिर्फ मसीह बने बल्कि उसके परिवार में शामिल भी किए जाए। यह कैसे होता है? आप कैसे लोगों को कलीसिया के सदस्य बनाते हैं ताकि वह अन्य विश्वासियों के साथ संगति बनाए? हम कैसे लोगों की अगुवाई करते हैं कि वे केवल मसीह न बने रहे बल्कि उसके परिवार और अन्य मसीहों के साथ मसीह की देह में सदस्य बन जाए? आज मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि आप कैसे यह कर सकते हैं। कुछ सुझाव इस तरह से हैं। सबसे पहले आपको अगुए से आरंभ करना है और ऐसा वातावरण बनाना है कि लोग आपकी कलीसिया के सदस्य बनने की इच्छा रखें। वह कैसा वातावरण है जहां लोग स्वयं कहने लगे कि हम उस कलीसिया में आराधना करने ही नहीं आएंगे बल्कि इसके समर्पित सदस्य बनकर सेवा करेंगे? दो बातें हैं जिनको लोग अपने जीवन में बहुत महत्व देते हैं, प्रेम और उनको स्वीकार किया जाना। मानव जाति की यह सबसे बड़ी दो आवश्यकता है, सबसे बड़ी दो आवश्यकताएं। यही दो चीजें कलीसिया को प्रकट करना है। यूहन्ना 13:36 में यीशु ने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मसीह होने का सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि हम न सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करें बल्कि एक दूसरे से प्रेम करें। हम जैसे मसीह के प्रति समर्पित है वैसे ही एक दूसरे के प्रति भी समर्पित हो। यही सत्य सहभागिता है। कलीसिया की 5 प्रकार की महत्वपूर्ण सहभागिताओं में से एक है। रोमियो 15:7 में बाइबल बताती है, एक दूसरे को ग्रहण करो जैसे मसीह ने तुम्हें ग्रहण किया है। अतः जैसे मसीह ने हमें अनुग्रह तथा बिना शर्त स्वीकार किया है, हमें भी उसी प्रकार परमेश्वर के परिवार के लोगों को ग्रहण करना है। हमें मसीह में भाई बहनों को प्यार करना है। बाइबल बताती है, यदि मैं कहूँ कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ और अपने भाई से प्रेम न करूँ तो सत्य मुझ में नहीं है। अतः हमें ऐसे वातावरण को बनाने की आवश्यकता है जहाँ प्रेम और स्वीकार किया जाना होता है। बढ़ती हुई कलीसियाएं प्यार करती है और प्यार करने वाली कलीसियाएं बढ़ती है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया बढ़े तो आपको इसे एक परिवार के रूप में बनाना है, न कि व्यापार, क्लब या अन्य संगठन के रूप में, क्योंकि कलीसिया एक परिवार है। आप में से जो पास्टर, एल्डर या अगुए हैं, उनको मैं खास तरीके बताऊंगा कि वे कैसे ऐसा माहौल बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों की चिंता करें और उनको अपना प्रेम दिखाएं। कई कलीसियाएं इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि पास्टर अपने ही सदस्यों के साथ रूखा व्यवहार करते हैं। यदि आप अपनी कलीसिया की गर्माहट को नापना चाहते हैं तो आप अपने मुंह में थर्मामीटर रखें। बहुत से अगुए अपने कामों तथा व्यवहार से प्रकट करते हैं कि वे सदस्य नहीं बनेंगे क्योंकि अगुए प्रेम करने वाले नहीं हैं। आप ठीक रीति से उन तक पहुंचकर वास्तविक होकर उन्हें दिखा सकते हैं कि आप कलीसिया के प्रेमी वास्तव में प्रेमी और अगुए हैं। कलीसिया के माहौल को गर्म रखने का एक उपाय यह भी है कि आप लोगों के नाम याद रखें, आप उन्हें नाम लेकर अभिवादन करें। लोगों को इससे बढ़कर और कुछ आनंददायक नहीं लगता कि कोई उन्हें नाम लेकर पुकारे, विशेषकर जब वे कुछ इतवार को ही आराधना में आए हों और आप उन्हें उनके नाम से जानते हैं। मैं सोचता हूं कि यह आपको आदत बनानी चाहिए कि आराधना से पहले और बाद में आप व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करें, ताकि वे जान ले कि आप उनको प्रेम करते हैं और उनकी चिंता करते हैं। तब आप मसीह स्पर्श से लोगों को छू सकते हैं। बाइबल बताती है कि हमें एक दूसरे का पवित्र चुंबन से अभिवादन करना चाहिए। कई सभ्यताओं में ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन मैं जानता हूं कि स्पर्श में, हाथ मिलाने में, गले लगाने में या पीठ थपथपाने में लोगों में उत्साह आ जाता है। कभी कभी मैं बिना यह जाने हुए कि सप्ताह में लोगों को किस मुसीबत का सामना करना पड़ा है, उनको प्रेम प्रदर्शित करता हूं। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है जब लोग मुझे बताते हैं कि पास्टर, प्रति इतवार को जो हमें प्रेम मिलता है, स्पर्श, गले लगाने के द्वारा अथवा प्रोत्साहन के वचनों के द्वारा, वह काफी होता है। यदि आप ऐसा आरंभ करेंगे तो दूसरे लोग भी ऐसा ही करेंगे। दूसरी बात जो आप कर सकते हैं वह यह है कि आप लोगों को कलीसिया के सदस्य होने के मूल्य को बता सकते हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य होने के महत्व को उन्हें बताएं। कलीसिया में आने वाले व्यक्ति और इसके वास्तविक सदस्य में केवल समर्पण का अंतर होता है। परमेश्वर के परिवार के प्रति आप जितने समर्पित होंगे, उतना ही अधिक आप परिपक्वता में बढ़ते जाएंगे। बाइबल कहती है कि मसीह ने कलीसिया को प्यार किया और इसके लिए अपने प्राण दिए। जितने अधिक आप मसीह की पहचान में बढ़ेंगे, उतने अधिक आप समर्पित बनेंगे। जब कभी आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कहता है, मैं मसीह हूं लेकिन मुझे कलीसिया की आवश्यकता नहीं है, तब आप पता कर लेंगे कि वह व्यक्ति परिपक्व नहीं है। यीशु ने कलीसिया को इस योग्य समझा कि वह इसके लिए अपने प्राण दे। यदि हम इसे महत्वपूर्ण समझते हैं तो हमें भी समर्पित होना चाहिए। जब आप लोगों को मसीही कलीसिया के परिवार के बारे में बताते हैं, तो आपको यह बताने की जरूरत है कि चर्च शब्द दो प्रकार से नए नियम में प्रयोग किया गया है। पहला यह है कि एक सार्वभौमिक कलीसिया है जिसके सदस्य विश्वासी हैं, जो इतिहास के किसी भी समय किसी भी क्षेत्र या देश में रहे हैं। कुछ लोग इसे अदृश्य कलीसिया कहते हैं, लेकिन यह बात पूरे नए नियम में दो या तीन बार ही प्रयोग की गई है। अधिकांश जब आप चर्च शब्द नए नियम में पाते हैं, तब यह स्थानीय विश्वासियों के एक परिवार के रूप में प्रकट होती है। उस समय कलीसिया घरों में, नगरों में मिलती थी, जैसे फिलिपी, कोरिंथ में, दोरकस के घर में आदि, जो विशेष रूप से एक कलीसिया की ओर संकेत करते हैं। हम सभी को एक परिवार की आवश्यकता होती है। जब आप सार्वभौमिक कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं, तब आपको स्थानीय परिवार की आवश्यकता होती है। मसीही जीवन के तीन भाग हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप इन तीन भागों में शामिल हो। पहला भाग है विश्वास करना। प्रेरितों के काम 16:39 में बाइबल कहती है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू बच जाएगा। आप जानते हैं कि विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य बनते हैं। केवल विश्वास ही पर्याप्त नहीं है। बाइबल कहती है कि हम सदस्य एक परिवार के सदस्य हैं। बाइबल कहती है कि आप अन्य विश्वासियों के साथ परमेश्वर के हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि आप अपना जीवन स्वयं चलाए, बल्कि अन्य सदस्य है जो आपकी सहायता करते हैं। यही सहभागिता है, यही वह सहायता है जो आपको मसीह जीवन में आवश्यक है। तीसरी बात है कि आप वह बने जो परमेश्वर चाहता है। रोमियो 8:29 में बाइबल बताती है कि आरंभ ही से परमेश्वर ने यह ठहराया कि जो उसके पास आए वे उसके पुत्र की समानता में बढ़ते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़े और उसकी इच्छा पूर्ण करें। स्थानीय मसीह कलीसिया के सदस्य होने से क्या लाभ है, मैं यहाँ कई लाभ आपको बताऊंगा। सबसे पहले, कलीसिया मुझे एक अच्छे विश्वासी के रूप में पहचानती है। जब मैं अपने आप को अन्य विश्वासियों के साथ रखता हूँ, तो मैं अपने आप को मसीही कहलाने से नहीं शर्माता हूँ। मैं परमेश्वर के परिवार का भाग होने के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। दूसरी बात के मुझे सहायता और प्रोत्साहन मिलता है। हम सबको सहायता की आवश्यकता होती है। बाइबल बताती है कि हमें एक दूसरे के बोझ को उठाने हैं, एक दूसरे को उत्साहित करना है। बाइबल बताती है कि संगति करना न छोड़े और संगति की आदत न छोड़े, क्योंकि मसीह जीवन संगति का जीवन है। तीसरी बात, कलीसिया रूपी परिवार मुझे मेरे आत्मिक वरदान और सेवा को खोजने और विकसित करने में सहायता करती है। यह वह स्थान है जहां आप अपने शिक्षा देने का वरदान, सेवा का वरदान, अवभगत करने का वरदान, देने का वरदान और अगुवाई का वरदान प्रयोग कर सकते हैं। यह सब कुछ कलीसिया रूपी परिवार में किया जाता है। चौथी बात, जब मैं कलीसिया रूपी परिवार में शामिल हो जाता हूँ तो यहाँ मुझे भक्त अगुओं की आत्मिक सुरक्षा मिलती है। इब्रानियों 13:17 में बाइबल बताती है कि पास्टर और कलीसिया के अगुवे उन आत्माओं की चौकसी करते हैं जो उनकी जिम्मेदारी में है। एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि कलीसिया रूपी परिवार के सदस्य बनने से मुझे जवाबदेही की जिम्मेदारी में सहायता मिलती है जो मेरी प्रगति के लिए आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि नए नियम में एक दूसरे वाक्यांश 50 से अधिक बार प्रयोग हुए हैं? बाइबल बताती है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना है, चिंता करनी है, अभिवादन करना है, उत्साहित करना है, सहायता परामर्श देना है और प्रार्थना आदि वगैरह। यह विश्वासियों की आपसी सेवा है। हमें एक दूसरे की देखभाल करनी है और जवाबदेही और जिम्मेवारी जो कलीसिया के भाग होने के द्वारा मिलती है, हम उन्नति कर सकते हैं। यह बहुत से लाभ है जिन्हें हम उन लोगों के साथ बांट सकते हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। हो सकता है वे मसीह बन गए हों लेकिन अभी कलीसिया के भाग नहीं बने। हमें ये लाभ उनके साथ बांटना आवश्यक है। तीसरी बात, आप लोगों को मसीह की देह के प्रति समर्पित बनाने हेतु एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जहां आपकी कलीसिया रूपी परिवार में उनका स्वागत हो। प्रत्येक कलीसिया अपने आप में ऐसी होती है जैसे मेरे अंगूठे का निशान। मेरे अंगूठे का निशान किसी और का नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्रत्येक कलीसिया के अंगूठे का निशान भिन्न होता है। इसका इतिहास अनुपम है, आपकी कलीसिया की संस्कृति भिन्न है, प्रगति की दर भी भिन्न है, इसलिए आपकी योजना दूसरी कलीसियाओं से भिन्न होगी। कुछ प्रश्न है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं जिनसे आपको अपनी योजना बनाने में सहायता मिलेगी। मैं यहाँ कुछ प्रश्न आपको बताऊंगा। भजन संहिता 20:18 में बाइबल बताती है, सलाह लेकर अपनी योजना बनाओ। यहाँ मैं आपको कुछ सलाह व प्रश्न देना चाहूंगा जो आपको पूछने हैं कि कैसे एक कलीसिया के भाग बनते हैं। कलीसिया के अगुवे होने के नाते आपको पूछना है कि इस कलीसिया के सदस्यों से परमेश्वर क्या आशा रखते हैं। आप लोग एक साथ नए नियम का अध्ययन कर सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। एक सूची बना सकते हैं कि परमेश्वर इस कलीसिया के सदस्यों से क्या चाहता है। इस समय हम अपनी कलीसिया के सदस्यों से क्या चाहते हैं? इस समय हम अपनी कलीसिया के सदस्यों से क्या आशा करते हैं? आपको पूछना है हमारी कलीसिया में किस प्रकार के लोग हैं और उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी रुचि क्या है। हम इस कलीसिया रूपी परिवार को कैसे अर्थपूर्ण बना सकते हैं? हम कैसे लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि उनको प्यार किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है? किस प्रकार की सेवा हम अपने सदस्यों को दे सकते हैं? जो कुछ अभी हम उनको दे सकते हैं उनमें हम कैसे मूल्य जोड़ सकते हैं? यदि आप अपने मस्तिष्क को सृजनात्मक बनाएं और पवित्र आत्मा से नए विचार मांगे तो वह देगा, तब आप अपनी कलीसिया के सदस्यों की मदद कर पाएंगे। मैं ऐसी कलीसियाओं को भी जानता हूं जो हर प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। बच्चों के लिए शिक्षा, बीमारों को भोजन और गरीबों को कपड़े आदि देते हैं। मेरी ही अपनी कलीसिया में 150 से अधिक विभिन्न सेवाएं हैं जिनके द्वारा हमारे चर्च के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसलिए आप ये प्रश्न पूछे कि जिनसे लोग ये समझ सके कि वे आपकी कलीसिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। आपको यह जानना भी आवश्यक है कि लोग आपकी कलीसिया में आते हैं जो मसीही बन चुके होते हैं। उनके अपने कुछ प्रश्न होते हैं। केवल इसलिए कि उन्होंने मसीह को स्वीकार कर लिया है वे स्वयं ही आपकी कलीसिया में शामिल नहीं होंगे। वे 5 बातें जानना चाहेंगे कि वे आपके परिवार के सदस्य बने या नहीं। पहला प्रश्न, जब एक सदस्य अथवा एक व्यक्ति जो आपकी कलीसिया का सदस्य बनने का विचार कर रहा है आपकी कलीसिया में आता है, वे पूछते हैं क्या मैं इस कलीसिया को अपनाऊं? पहला प्रश्न जो वे पूछते हैं, क्या मैं यहाँ के योग्य हूँ? यह प्रश्न स्वीकार किए जाने के विषय में है। सबसे अच्छा तरीका लोगों को यह बताने का कि वे आपकी कलीसिया के योग्य है, आप छोटे छोटे समूह बनाएं। इस विषय में हम आने वाले सत्रों में भी चर्चा करेंगे कि आपको समूह बनाने की आवश्यकता क्यों है, ताकि लोग महसूस करें कि उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाती है और उनके लिए प्रार्थना की जा सकती है। आपको अपनी कलीसिया में प्रत्येक को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको किसी को जानने की आवश्यकता है। 5, 6 अथवा 10 लोगों को जानने की आवश्यकता है और यह महसूस करना है कि वह आपकी कलीसिया के हैं, ताकि वह लोग जाने कि वह वास्तव में स्थान के भाग है। दूसरा प्रश्न वह पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई मुझे जानता है, क्या मुझे कोई जानना चाहती है? यह मित्रता का प्रश्न है। लोग केवल भावपूर्ण कलीसिया को ही नहीं ढूंढते, वे मित्रों को ढूंढते हैं। वे ऐसे लोगों को चाहते हैं जो उनकी चिंता करे। इसलिए आपको ऐसे सुअवसर प्रदान करने हैं जहां लोग आपकी कलीसिया में आपसी संबंध बना सके। यह अचानक नहीं हो जाता। ऐसे कार्यक्रम बनाए जहां लोग एक दूसरे को जान सके। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि लोगों को उनके नाम के बैच बनाकर लगवाएं, ताकि लोग एक दूसरे के नाम जान पाए। तीसरा प्रश्न, क्या मेरी यहाँ जरूरत है? यह एक महत्व का प्रश्न है। लोग ऐसी कलीसिया में जाना चाहते हैं जहां वे अपने जीवन के द्वारा अनुदान दे सकें। क्या यहां मेरी जरूरत है? वे ऐसा महसूस करना चाहते हैं कि वे कुछ प्रभावशाली है। इसलिए आपको यह दिखाना है कि आपकी कलीसिया को उनकी आवश्यकता है और आप मसीह की देह में उनको सेवा हेतु प्रयोग कर सकते हैं। हम सब मसीह के लिए महत्वपूर्ण है। तब चौथा प्रश्न आता है, इस कलीसिया में शामिल होने से, इसके भाग बनने से क्या लाभ होगा? यह लाभ से संबंधित प्रश्न है और बाइबल के कारण को समझाने की आवश्यकता है जिनके विषय में हमने चर्चा की है। आप उन्हें व्यवहारिक और व्यक्तिगत कारण भी बता सकते हैं। तब पांचवा प्रश्न यह होता है कि यदि वे एक कलीसिया के सदस्य बनने जा रहे हैं तो उनसे कलीसिया क्या चाहती है? यदि मैं इस कलीसिया का सदस्य बनना चाहता हूँ, जो आशाओं का प्रश्न, मुझसे क्या आशा की जाती है? लोगों का यह अधिकार है कि वे जाने कि जब आपकी कलीसिया के सदस्य बनते हैं तो उनसे क्या आशा की जाती है। अब चौथा सिद्धांत जो आपको लोगों को अपने परिवार के संगति में लाने के लिए उपयोग करना है वह है कि आप एक कक्षा बनाएं। इस कक्षा में आप उनको बताएं, उनकी मदद करें कि वह यह महसूस करे कि उनका यहाँ स्वागत है और उनके लिए स्थान है। बहुत से अध्ययनों से पता चला है कि जिस तरह के लोग कलीसियाओं में आते हैं वह प्रभावशाली है कि वे लंबे समय तक प्रभावशाली मसीह बने रहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण कक्षा किसी भी कलीसिया में उन लोगों के लिए होती है जो आपकी कलीसिया के सदस्य बनने के विषय में सोच रहे हैं। एक मजबूत सदस्यता की कक्षा मजबूत कलीसिया का निर्माण करती है। मैं विश्वास करता हूँ कि पास्टर को इस कक्षा में पढ़ाना चाहिए। वह दूसरी कलीसियाओं के अगुओं को सिखा सकते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पास्टर को इस कक्षा में पढ़ाना चाहिए ताकि लोग आपके दर्शन, आपका हृदय, आपका प्रेम जो लोगों के लिए है, आप उनसे क्या चाहते हैं, वे आपसे क्या चाहते हैं आदि बातें जान सके। जब आप कक्षा लेते हैं आपको यह बातें बतानी आवश्यक है कि कलीसिया क्या है। आप बता सकते हैं कि कलीसिया एक परिवार, एक झुंड, एक संगति और मसीह की देह है। इन प्रतीकों के पीछे बहुत बड़े सत्य बाइबल में बताए गए हैं। आप कलीसिया के 5 उद्देश्यों को पढ़ा सकते हैं, आराधना, सुसमाचार प्रचार, शिष्यता, सेवा और संगति। और कैसे परमेश्वर चाहता है कि यह 5 उद्देश्य न सिर्फ कलीसिया के ही उद्देश्य बनकर रह जाए, लेकिन यह हमारे जीवन के उद्देश्य बन जाए। आप बता सकते हैं कि आपकी कलीसिया के सदस्य बनने के लिए क्या क्या बातें आवश्यक है और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। अपने दर्शन को बताएं और उसको विकसित करने के लिए चर्चा करें कि कैसे आप अपने गांव, अपने कस्बे और अपने शहर के लोगों तक पहुंचेंगे। तब आप यह बता सकते हैं कि लोग इस कार्य में कैसे शामिल हो सकते हैं, कैसे सेवा के क्षेत्र में एक सदस्य होने के नाते काम कर सकते हैं। हमारी कलीसिया में एक ऐसी कक्षा लगती है जिसमें मैं हर माह पढ़ाता हूँ, इतवार दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम 7:30 तक। यह 4.5 घंटे की कक्षा होती है जिसमें हम मुफ्त भोजन भी देते हैं। हमारी सदस्यता की कक्षा कक्षा 101 जिसे हम अपनी कलीसिया में लगाते हैं उसमें यह सारी बातें बताते हैं जिसकी चर्चा हमने अभी की है। पांचवी बात जो आपको करनी है वह यह है कि आपको सदस्यता की वाचा को विकसित करना है। यह सदस्यता की वाचा क्या है? यह वाचा कलीसिया के सभी सदस्यों के बीच में एक समझौता है कि वे परमेश्वर और एक दूसरे के प्रति समर्पित है। यह समर्पण की वाचा वचन पर आधारित है। दूसरा कुरिन्थियों 6:5 में पौलुस दो प्रकार के समर्पण की चर्चा करता है। वह कहता है, पहले उन्होंने अपने आप को प्रभु को दिया, अथवा एक व्यक्ति जो आपकी कलीसिया का अपने आप को हमें दिया। देखिए, यह दो प्रकार के समर्पण है। पहले आप अपने आप को मसीह को समर्पित करें, तब अपने आप को एक दूसरे के प्रति समर्पित करें, जो स्थानीय कलीसिया के भाग बनने के द्वारा होती है। यही एक संगति है। सैडलबैक चर्च, जहां मैं पास्टर हूं, सदस्य के लिए चार बातें आवश्यक है। पहली, आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है और सार्वजनिक घोषणा की है कि आप प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। दूसरी, आपका बपतिस्मा हुआ हो, जो यीशु मसीह के प्रति आपके समर्पण का प्रकटीकरण है। यीशु ने कलीसिया को आज्ञा दी, सारे संसार में जाओ और चेले बनाओ, और तब कहा उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए हम वही करते हैं जो पवित्र आत्मा ने यीशु की महान आज्ञा में हमें दी है। तीसरी बात, हमारी सदस्यता की कक्षा को पूरा करें। जैसा मैंने बताया कि यह 4.5 घंटे की कक्षा है जिसमें आपको एक बार ही भाग लेने की जरूरत है, जो हर माह लगती है। मैं साल में 12 बार पढ़ाता हूँ। और चौथी बात, वह कलीसिया की वाचा पर हस्ताक्षर करें। सदस्यों की वाचा क्या है? यह लोगों के बीच में एक समझौता है जो हम एक साथ करने के लिए समर्पित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी कलीसिया की वाचा पर सभी सदस्यों की एक राय है। लगभग 8 या 9 हजार लोगों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए मैं आपको यह पढ़कर सुनाता हूँ। यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार, बपतिस्मा लेकर सैडलबैक चर्च के विश्वास, वचन, योजना और ढांचे में मेरी रजामंदी है। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई महसूस करता हूँ कि मैं सैडलबैक कलीसिया में जुड़ जाऊँ। ऐसा करते हुए मैं अपने आप को परमेश्वर और अन्य सदस्यों के प्रति समर्पित करता हूँ। यहाँ वे लिखते हैं जो भी वे वायदा करते हैं। पहला, मैं कलीसिया की एकता की सुरक्षा करूंगा, सदस्यों के साथ प्रेम का बर्ताव करूंगा, अगुओं के पीछे चलूंगा और झूठी कथा कहानियों पर मन नहीं लगाऊंगा। आप जानते हैं कि झूठी कहानियां कलीसियाओं को नाश कर देती है। लोग समस्याओं की चर्चा करते हैं। गपशप वह है जहां आप न तो समस्याएं बताते हैं, न ही उसका समाधान बताते हैं। बाइबल इसे पाप कहती है। इसलिए हम इस बात पर जोर डालते हैं कि लोग गपशप न करें और दूसरों की बुराई न करें। उनको एक दूसरों से प्रेम करना है। दूसरी बात, मैं इनकी जिम्मेदारियां बांटने का वायदा करता हूं। इसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करके जो लोग कलीसियाओं में नहीं जाते उनको निमंत्रित करके और नए लोगों को कलीसिया में आने हेतु उनका स्वागत करते हैं। इस प्रकार वह कलीसिया की जिम्मेदारियों को बांटते हैं। तीसरी बात, मैं अपने वरदान और गुणों के अनुसार कलीसिया में सेवा करूंगा, पास्टर द्वारा प्रशिक्षित होकर और एक दास का हृदय विकसित करके। इसलिए वे सेवा करने का वायदा करते हैं। सैडलबैक चर्च में हम चाहते हैं कि प्रत्येक सदस्य सेवा में हो। आप बिना यह सेवा का वायदा किए कलीसिया के सदस्य नहीं बन सकते। चौथी बात, मैं कलीसिया की साक्षी को बनाए रखूंगा, लगातार इसमें उपस्थित होकर भक्तिपूर्ण जीवन जीने के द्वारा और लगातार देने के द्वारा। यही सदस्यता की वाचा है जो हमारी कलीसिया में लागू है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप बाइबल अध्ययन करें, प्रार्थना करें और अपनी कलीसिया के लिए भी एक सदस्यता की वाचा बनाएं। आप पाएंगे कि जब आप लोगों से एक बड़े समर्पण की बात करते हैं तब आप उनसे बड़ा प्रत्युत्तर प्राप्त करेंगे। लोग चुनौती लेना चाहते हैं। लोग अपने जीवन को किसी अर्थपूर्ण कार्य के लिए देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनके जीवन का समर्पण हो और किसी भले कार्य के लिए अर्पण हो। इसलिए अपनी अपनी कलीसियाओं में इस प्रकार की सदस्यता की वाचा बनाएं और लोगों से हस्ताक्षर कराएं, तो आप जानेंगे कि वास्तव में आपकी कलीसिया में कौन सदस्य आपके साथ है और कौन नहीं। अपनी कलीसिया में आप संबंध बनाने के लिए सु अवसर निकाल सकते हैं। संबंध स्थापित करने के हेतु अवसर बनाइए। जैसा मैंने पहले कहा कि आपको यह आवश्यकता नहीं कि आप सब लोगों को परिवार में जाने, लेकिन कुछ एक लोगों को जानना आवश्यक है। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप छोटे समूह बनाए, एक साथ खाना खाएं। यह बाइबल पर आधारित सत्य है। बाइबल में लिखा है वे एक साथ खाते पीते थे और एक दूसरे के साथ बांटते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे, साथ खेलते थे और साथ आनंद करते थे। ऐसे अवसर व कार्यक्रम बनाए जहां लोग एक दूसरे को जाने। एक और कदम आप उठा सकते हैं जिससे आपसी संबंध अच्छे बन सकते हैं कि आप अपने लोगों को एक या दो दिन के लिए कहीं कैंप, रिट्रीट, पहाड़ी या समुद्री इलाके में भेजते जहां वे एकांत में संबंध बना सके और एक दूसरे के करीब आ सके। मैं यह सब कुछ इसलिए कह रहा हूं कि बाइबल बताती है कि इससे सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, क्योंकि तुम एक दूसरे को प्यार करते हो। एक मसीह होने के नाते यदि हमारे संबंध मजबूत है तो हम एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और चिंता करते हैं। तब संसार इसे देखेगा। हमारी कलीसिया में बहुत प्रकार की सेवाएं हैं। एक व्यक्ति आकर मुझसे बोला कि मैं बड़ई हूँ और परिवार के किसी भी सदस्य के लिए मरम्मत का काम मुफ्त करूंगा। दूसरा व्यक्ति बोला मैं मैकेनिक हूँ और कार या ऑटोमोबाइल्स ठीक कर दूंगा। अन्य लोग हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं। जब उनके माता पिता बाजार जाते हैं या अस्पतालों में मिलने जाते हैं, ऐसा करने के द्वारा हम इस संसार में अपनी सुंदर साक्षी प्रकट करते हैं जो परमेश्वर के परिवार में प्रेम व समर्पण से ओतप्रोत है। सातवीं बात जो आप कलीसिया के सच्चे सदस्य बनाने हेतु कर सकते हैं वह यह है कि आप छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें पूरा समय दे ताकि वे घरों में व खुले में मिल सकें, वे पार्क मैदान में मिल सकें, वे पहाड़ों पर मिल सकें, वे व्यापार के स्थान पर मिल सकें। जितने ज्यादा आप छोटे समूह बनाएंगे उतना ज्यादा आपका संबंध मजबूत होगा। प्रेरितों के काम 5:42 में बाइबल बताती है कि प्रतिदिन वे मंदिर में तथा घरों में मिलते थे। ध्यान से सुनिए, वे प्रतिदिन मिलते थे मंदिर में तथा घर घर जाकर। वास्तविक बाइबल पर आधारित कलीसिया में दो प्रकार का मिलन होता है। पहला, वे मंदिर में मिलते थे व जब लोग एक साथ मसीह की देह के रूप में मिलते थे। शायद आप हर इतवार ऐसा करते हैं जब आप अन्य विश्वासियों के साथ संगति करते हैं। यह एक आनंददायक बात है, लेकिन बाइबल यह भी बताती है कि वे प्रतिदिन घर घर जाकर मिलते थे, क्योंकि घरों में वे एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से सुनकर देखभाल करते थे। आखिरी बात मैं कहूंगा कि अपनी कलीसिया के सदस्यों को ऐसा महसूस होने दीजिए कि वे विशेष लोग हैं। उनकी मदद कीजिए ताकि वे जाने कि वे मूल्यवान है और परिवार के एक भाग है। जब आप अपनी कलीसियाओं में नए विश्वासियों का स्वागत करते हैं तो उन्हें एक छोटा सा प्रमाण पत्र दे कि वे आपकी कलीसिया के सदस्य हैं। हम अपनी कलीसिया में ऐसा करते हैं कि जब एक व्यक्ति बाप्तिस्मा लेता है तब एक जन उसकी तस्वीर ले लेता है और एक प्रमाण पत्र पर चिपकाते हैं जिस पर लिखा रहता है आपका बपतिस्मा इस तारीख को हुआ, आपकी बपतिस्मा की तस्वीर आपके पास्टर के साथ यहाँ लगी है। हम यह उन्हें दे रहे हैं। हम उनके सम्मान में भोजन आदि का प्रबंध करते हैं और इसके द्वारा उनका अभिवादन करते हैं। हम उन्हें अपनी गवाही देने के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आप इनमें से कुछ बातें अपनी कलीसियाओं में करना आरंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग आपके चर्च के प्रति समर्पित होंगे और मसीह में आगे बढ़ेंगे तथा अन्य लोगों को भी कलीसिया के भाग होने के लिए ले आएंगे।